गाय और बैल के अतिरिक्त अन्य भी अनेक पशुओं को वैदिक युग के आर्य पाला करते थे। इनमें घोड़े, ऊंट, भेड़, बकरी, हाथी, गधे, मृग और कुत्ते मुख्य थे, क्योंकि घोड़े सवारी तथा युद्ध में काम आते थे, अतः उन्हें भी बहुत महत्व दिया जाता था। इसीलिए उन्हें सुवर्ण के आभूषणों से सजाया भी जाता था और गौवों के समान दान में भी दिया जाता था। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर घोड़ों के दान का उल्लेख है। एक सूक्त में यह कहा गया है कि जो कोई दक्षिणा में घोड़े देता है दीवलोक को प्राप्त होता है, और दक्षिणा में दी जाने वाली वस्तुओं में गौवें, हिरण्य और अन्न के साथ घोड़ों को भी गिनाया गया है। एक मंत्र में तो सत सहस्त्र अर्थात 1,00,000 घोड़ों के दान का उल्लेख किया है। घोड़ों के साथ गधों को पालने की भी प्रथा भी वैदिक युग में थी। ऋग्वेद के एक मंत्र में ऋषि पृषधर कानव द्वारा प्रसकन्नव के दान की प्रशंसा में यह कहा गया है कि उसने 100 गधर्व अर्थात गधे, 100 भेड़ और 100 दास दान में दिए। कुत्ते जहाँ घर की रखवाली करते थे वहाँ चोरों तथा वन्य जंतुओं को भगाने का कार्य भी करते थे। एक मंत्र में ऋषि वशिष्ठ ने सार में अर्थात कुत्ते से कहा कि वह हस्ते ने चोर और तस्कर को भगा दे। बैलों और घोड़ों के समान ऊँटों को भी वैदिक युग में पालतू पशुओं के रूप में प्रयुक्त करना प्रारंभ हो गया था। एक मंत्र में 4 जोड़ी उष्ट्र अर्थात ऊँट दान में दिए जाने का उल्लेख है। एक मंत्र में यह संकेत मिलता है कि ऊँटों का प्रयोग युद्ध के लिए भी किया जाता था। वैदिक युग में हाथी को भी पालतू बना लिया गया था और उसे राजकीय सवारी समझा जाता था। हाथी को बस में रखने के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकुश का भी ऋग्वेद में उल्लेख है। गाय के समान भैंस अर्थात महीष को भी वैदिक युग में पाला जाता था। एक मंत्र में सहस्त्र महीषों का उल्लेख विद्यमान है। अजा अर्थात बकरी और अभी अर्थात भेड़ के पाले जाने के संकेत भी वैदिक साहित्य में पाए जाते हैं। यजुर्वेद में हस्तिप हाथी पालने वाले, अश्वप घोड़े पालने वाले और गोपाल के साथ अजपाल और अभिपाल का भी उल्लेख है। भेड़ों को पालने का एक प्रयोजन यह था कि उनकी ऊन से कपड़े बनाए जा सकें। ऋग्वेद में भेड़ों की ऊन के वस्त्रों का वर्णन है और परुषनी अर्थात रावी नदी के समीपवर्ती प्रदेश की ऊन का विशेषतया उल्लेख है। वैदिक साहित्य में बहुत से अन्य भी पशु पक्षियों के नाम आए हैं जिनसे वैदिक युग के आर्य भली भांति परिचित थे। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जहाँ अश्व, गौ, अजा और अभी की उत्पत्ति का उल्लेख है, वहाँ साथ ही अन्य पशुओं का भी जिन्हें की तीन प्रकार का कहा गया है, वायव्य, अरण्य और ग्राम्य। पालतू पशु ग्राम्य कहते थे। पक्षियों की संज्ञा वायव्य थी और जंगली पशुओं को अरण्य कहा जाता था। अथर्व वेद में मृग, सिंह, व्याघ्र, वृक अर्थात भेड़िया, झच्छिक अर्थात रीछ, बराह अर्थात सुअर और अरण्य पशुओं और हंस आदि सुपर्ण आदि द्विपाद वायव्य पक्षियों का उल्लेख मिलता है। सांप, बिच्छू आदि जंतुओं का भी इसी प्रसंग में ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। दूसरा, उद्योग और व्यवसाय। यद्यपि वैदिक युग में आर्यों के जीवन निर्वाह के मुख्य आधार खेती और पशुपालन थे, पर अनेक विध उद्योगों और व्यवसायों का भी उस समय प्रारंभ हो चुका था। उस समय वस्त्र बुनने वाले, कपड़े धोने वाले, लकड़ी और धातुओं का काम करने वाले और बर्तन बनाने वाले आदि शिल्पों का अनुसरण करने वाले लोगों ने जुलाहा, बढ़ई, धोबी, लुहार आदि जातियों का रूप प्राप्त नहीं किया था। एक ही परिवार के विविध सदस्य विभिन्न शिल्पों का अनुसरण किया करते थे। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि मैं कारु शिल्पी हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता उपले पाथती है, हम सबकी बुद्धि विभिन्न प्रकार की है, पर इसमें संदेह नहीं कि वैदिक युग में अनेक शिल्प उन्नत दशा को प्राप्त हो चुके थे। इसी सूक्त में यह भी कहा गया है कि मनुष्यों की बुद्धि व क्षमता नाना प्रकार की होती है, जिसके कारण वे नाना प्रकार के व्रतों अर्थात धंधों को अपनाते हैं। बढ़ई लकड़ी के टुकड़े की इच्छा करता है, वैद्य रोगी और ब्राह्मण ऋत्विग ऐसे यजमान की जो सोमरस को निकाल सके। रुचि बुद्धि और क्षमता के भेद के कारण ही विविध लोग विभिन्न प्रकार के शिल्पों व व्यवसायों का अनुसरण करने में तत्पर होते हैं। यह तथ्य वैदिक ऋषियों को भली भांति ज्ञात था। वैदिक युग के कतिपय प्रमुख उद्योग निम्नलिखित थे। वस्त्र उद्योग - वैदिक युग में वस्त्र उद्योग अच्छी उन्नत दशा में था। कपड़ा बुनने वाले जुलाहे अर्थात जुलाहे को वाय कहा जाता था, जो विविध प्रकार के वस्त्र बुना करता था। अधो वस्त्र की संज्ञा वास थी और उसे बुनने वालों को वासोवाय कहते थे। वस्त्र निर्माण में ताने बाने का उपयोग होता था। ताने को तंतु कहा जाता था और बाने को ओतु। अथर्ववेद में रात और दिन को दो युवतियों के समान बताकर यह कहा गया है कि ये युवतियां दिन और रात वर्ष का ऐसा ताना बाना बुनती है जिसका कभी अंत नहीं होता। खडड्डी सदृश जिन उपकरणों पर कपड़े बुने जाते थे उनके नाम भी वैदिक मंत्रों में आए हैं। ऐसे नाम मयूख, खड्डी, खडड्डी की खूंटी और तसर अर्थात ढरकी आदि है। वस्त्र बनाने के लिए ऊन, रेशम तथा कपास का प्रयोग किया जाता था। वैदिक साहित्य में अनेक स्थानों पर ऊन और उससे बने कपड़ों का उल्लेख आया है। यजुर्वेद में लिखा है कि कवि कुशल व्यक्ति उरना सूत्र कती हुई ऊन से बुनाई करते हैं, पर उसनी अर्थात ब्यास नदी के तटवर्ती प्रदेश तथा गांधार देश की ऊन इस युग में बहुत प्रसिद्ध थी। एक मंत्र में परुषनी प्रदेश की ऊन के लिए सुंदैव विशेषण का प्रयोग किया है, जिससे उसकी उत्कृष्टता सूचित होती है। एक अन्य मंत्र में गंधार की भेड़ों को रोमस ऊन का वर्णन है। परुषनी तथा गंधार के ऊनी वस्त्रों के उत्कृष्ट तथा प्रसिद्ध होने के कारण वे दूर दूर तक बिकने के लिए जाया करते थे और यह व्यापार संभवतः सिंध नदी द्वारा होता था। इसीलिए एक मंत्र में सिंध नदी को सुवासा और उर्णावती कहा गया है। इन शब्दों से यही संकेत मिलता है कि सुंदर वस्त्र तथा सुंदर ऊन सिंधु नदी द्वारा ले जाई जाया करती थी। ऊन का प्रयोग केवल कपड़े बनाने के लिए ही नहीं होता था, अपितु उससे बनी जाली छानने के लिए भी प्रयुक्त की जाती थी। एक स्थान पर मेष अर्थात मेष मेढ़ा और अभी भेड़ से बने पुनान छननी या जाली द्वारा छानकर सोमरस को कलशों में रखने का उल्लेख है। ऊन कातने का कार्य प्रायः स्त्रियां करती थी। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि उरना सूत्र बनाने का काम स्त्रियों का ही है। शतपथ में कौशीय या रेशमी वासह वस्त्रों का भी उल्लेख है। सूची अर्थात सुई से कपड़े सीने की कला भी इस युग में विकसित हो चुकी थी। ऋग्वेद के एक मंत्र में छिद्र करती हुई सुई से सीने का उल्लेख विद्यमान है। धातु उद्योग वैदिक साहित्य में अनेक स्थानों पर अयस शब्द आया है। संस्कृत में इसका अर्थ लोहा है, पर वेदों में भी अयस से लोहा ही अभिप्रेत है। इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि अयस का रंग लाल होने के संकेत वेद मंत्रों में विद्यमान हैं, अतः अनेक विद्वान उसे तांबे का पर्यायवाची मानते हैं। अयस से चाहे लोहा अभिप्रेत हो चाहे तांबा, यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ऋग वेद के समय में धातु शिल्प का भलीभांति प्रयोग होने लगा था और धातु का उपयोग कृषि के उपकरणों, युद्ध के अस्त्र शस्त्रों तथा अन्य औजारों के निर्माण के लिए किया जाने लगा था। लुहार के लिए ऋग्वेद में कर्मार शब्द आया है। एक मंत्र में ब्राह्मण अस्पति की उपमा कर्मार से दी गई है, जो धोंकनी से आग को प्रदीप्त करता है। कर्मार द्वारा तैयार वस्तुओं की बहुत अच्छी कीमत प्राप्त होती थी। इसीलिए एक मंत्र में यह कहा गया है कि कर्मार सुवर्ण की इच्छा करता है। अथर्ववेद में कर्मारों की गणना रथकारों के साथ की गई है और राजा के मुख से यह प्रार्थना कराई गई है कि ये दीवान रथकार और मनीषी कर्मार तथा मेरे चारों ओर उपस्थित सब जन मेरी सहायता करें। कर्मार अयस नाम की जिस धातु से विविध प्रकार के उपकरण बनाता था वह लोहा था या तांबा, इस विषय पर भी वैदिक साहित्य से कुछ प्रकाश पड़ता है। शतपथ ब्राह्मण में लौह और अयस दोनों का उल्लेख किया गया है जिससे इनका पृथकत्व सूचित होता है। यजुर्वेद में जहाँ अनेक धातुओं का परिगणन किया गया है वहाँ हिरण्य त्रपु और शीशे के साथ अयस और लोह पृथक रूप से परिगणित है। अयस सदृश धातुओं से विविध उपकरण बनाने के लिए इन्हें आग में तपाया जाता था। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि यदि अयस को बहुत तपाया जाए तो वह सोने के रंग का हो जाता है। धातु द्वारा कौन सी वस्तुएं बनाई जाती थी इस विषय में वैदिक साहित्य से अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती। ऋग्वेद के एक मंत्र में आयसी पूरा अयस द्वारा निर्मित नगर का उल्लेख है और इसी मंत्र में वर्म अर्थात कवच और वज्र भी आए हैं। संभवतः इन तीनों के निर्माण में अयस्क का प्रयोग होता था। ऋग्वेद के एक सूक्त में ऐसे ब्रज का उल्लेख जिससे वृत्र का घात किया जाता है, उसके साथ ही वासी नामक एक अन्य उपकरण या अस्त्र का नाम दिया गया है जिसे स्पष्ट रूप में आयसी कहा गया है। अयस लोह त्रपु और शीशे जैसी धातुओं का उपयोग विविध प्रकार के पात्रों को बनाने के लिए भी किया जाता था। यजुर्वेद में कुंभी सुराधानी जिस पात्र में सुरा रखी जाए और अस्थाली अर्थात थाली सदृश पात्रों का उल्लेख है जिन्हें धातुओं द्वारा ही बनाया जाता होगा। रथ सदृश वाहनों के निर्माण में भी धातुएं प्रयुक्त होती होंगी, यह कल्पना करना असंगत नहीं है। वेदों में अनेक स्थानों पर रथों का उल्लेख मिलता है। अयस लौह त्रपु और सीसा आदि धातुओं के अतिरिक्त वैदिक साहित्य में सुवर्ण या हिरण्य का अनेक स्थानों पर वर्णन है। सिंधु नदी को हिरण्ययी कहा गया है क्योंकि उसके द्वारा धन की प्राप्ति होती थी। कर्मार अर्थात धातु शिल्पी अपने शिल्प से तैयार वस्तुओं के बदले में हिरण्य की प्राप्ति की इच्छा किया करता था। सुवर्ण का प्रयोग जहाँ आभूषण आदि बनाने के लिए होता था वहाँ उससे निष्क भी बनाए जाते थे। यह निष्क सुवर्ण का सिक्का होता था या आभूषण, इस प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद है, पर निष्क सदृश वस्तुओं के निर्माण से यह भली भांति समझा जा सकता है कि वैदिक युग में सुवर्णकार का शिल्प भी अच्छा उन्नत था। बढ़ई का शिल्प कर्मार और सुवर्णकार के समान तछा अर्थात बढ़ई भी वैदिक युग में एक महत्वपूर्ण शिल्पी होता था। उसका कार्य लकड़ी से विविध प्रकार की वस्तुएं बनाना था। तछा को त्वष्ट्र भी कहते थे। अथर्ववेद के एक मंत्र में कहा गया है कि त्वष्ट्र अर्थात स्वाधीति अर्थात वसूला द्वारा सुकृत रूप प्रदान किया करता है। बढ़ई के लिए तछा शब्द वैदिक साहित्य में अनेक स्थलों पर प्रयुक्त हुआ है। यजुर्वेद में कुलालों कर्मारों और निषादों आदि के साथ तछों और रथकारों को भी नमस्कार किया गया है। तछा का एक महत्वपूर्ण कार्य रथ और अन्य वाहन बनाना था। ऋग्वेद के एक मंत्र में रथ तथा अनस का उल्लेख है। अनस साधारण गाड़ी को कहते थे। संभवतः अनस एक ऐसी गाड़ी होती थी जो कच्चे पक्के रास्तों पर जा सकती थी। एक मंत्र से इस बात का संकेत मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में यागिक कर्मकांड का प्रतिपादन करते हुए अनस के प्रयोग का भी विधान किया गया है। अनस की तुलना में रथ अधिक परिष्कृत वाहन होता था जिसके निर्माण के लिए अधिक उन्नत शिल्प अपेक्षित था, इसीलिए तछाओं का एक पृथक वर्ग बन गया था जिसे रथकार कहते थे। रथकार लोग रथों को अत्यंत सुंदर रूप में बनाया करते थे। ऋग्वेद के एक मंत्र में रथ के लिए हिरण्यवर्णा अर्थात सुनहरी विशेषण का प्रयोग किया गया है। रथ और अनस के अतिरिक्त अनेक प्रकार की आसंदियाँ कुर्सियां या चौकियां तथा उठने बैठने के अन्य उपकरण भी बढ़इयों द्वारा बनाए जाते थे। अथर्ववेद और यजुर्वेद में आसंदियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। अन्न उद्योग वैदिक साहित्य के अनुशीलन से कतिपय अन्न उद्योगों का भी पता चलता है। एक ऐसा उद्योग चटाई बुनने का था जिसके लिए नड अर्थात नरकट को पत्थर से कूट कर प्रयुक्त किया जाता था। यह कार्य प्रायः स्त्रियां किया करती थी। चमड़े का उद्योग भी इस युग में प्रारंभ हो गया था। अथर्ववेद में हिरण के अजीन अर्थात चर्म का उल्लेख है जिसका उपयोग आरण्यक आश्रमों में निवास करने वाले मुनिजन किया करते थे। शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से अजीन वास मृग चर्म के वस्त्र का उल्लेख है। जूते बनाने के लिए बड़ा सुअर के चमड़े को प्रयुक्त किया जाता था। शतपथ ब्राह्मण में अनेक स्थलों पर वाराह उपानहों जूतों का वर्णन है वैदिक साहित्य में शालाओं तथा पूरों का अनेक स्थानों पर उल्लेख है। इनके संबंध में इसी अध्याय में पृथक रूप से लिखा जाएगा। शालाओं अर्थात भवनों को बनाने वाले शिल्पी भी उस समय अच्छी बड़ी संख्या में होंगे। यह कल्पना असंगत नहीं है। इसी प्रकार नौकाओं का वेदों में स्थान स्थान पर उल्लेख है। संभवतः तछा ही नौकाएं भी बनाया करते थे। यंत्र निर्माण डैश संभवतः वैदिक युग में कतिपय ऐसे भी यान थे जो यंत्र द्वारा संचालित होते थे और जिनके लिए घोड़े या बैलों की आवश्यकता नहीं होती थी। ऋग्वेद के एक सूक्त में ऋषि वामदेव द्वारा ऋभु देवताओं के स्तुति में कहा गया है कि हे ऋभुओं, तुम्हारे दिए हुए रथ में 3 चक्र हैं। वह घोड़ों के बिना चलता है और चलते हुए उससे धूल रजह उड़ती है। इस रथ द्वारा तुम्हारे महत्व एवं देवत्व का पता लगता है। घोड़े के बिना चलने वाला यह रथ किस प्रकार के यंत्र से युक्त होगा, इस विषय में कोई संकेत वैदिक साहित्य में उपलब्ध नहीं है। एक मंत्र में ऐसे प्लव नौकों का उल्लेख है जिसके साथ पक्षी विशेषण दिया गया है। पाल वाली नौ पर लगे हुए पाल पक्षी के पंखों जैसे प्रतीत होते हैं। संभवतः इस मंत्र में पाल वाली नाव ही अभिप्रेत है। व्यापार जब कृषि तथा उद्योग अच्छी उन्नत दशा में आ जाते हैं तो श्रम विभाग का भी विकास हो जाता है और उस परिणाम स्वरूप वस्तुओं का क्रय विक्रय होने लगता है। क्रममार और वाय जैसे शिल्पी अपने शिल्प द्वारा तैयार किए गए माल का विक्रय करके ही कृषि जन अन्न आदि को प्राप्त करते थे। वैदिक युग में भी वस्तुओं का क्रय विक्रय प्रारंभ हो गया था। यद्यपि यह बहुधा वस्तु विनिमय द्वारा ही संपन्न किया जाता था। जैसा कि इसी अध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है, इस युग में विनिमय के लिए गौओं को माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता था और उसे मूल्य की इकाई माना जाता था। पर विनिमय के लिए सिक्कों का उपयोग भी इस काल में किया जाने लगा था। इस बात के भी कुछ संकेत वैदिक साहित्य में मिलते हैं। वेदों के अनेक मंत्रों में निष्क शब्द आया है। इससे सुवर्ण का कोई आभूषण विशेष अभिप्रेत है या सोने का सिक्का, यह विषय विवादग्रस्त है। एक मंत्र में यह कहा गया है कि ऋषि कछिवान ने सवान के राजा तुर्त से 100 निष्क और 100 घोड़े दान में प्राप्त किए। यहाँ निष्क से कोई सिक्का ही अभिप्रेत है, यह प्रतीत होता है। ऋग्वेद के एक मंत्र में निष्क ग्रीव का उल्लेख मिलता है। यह तो स्पष्ट ही है कि निष्ग्रीव एक ऐसा आभूषण था जिसे गले में पहना जाता था, पर हार या माला बनाने के लिए सुवर्ण के निष्कों अर्थात सिक्कों को भी प्रयुक्त किया जा सकता था, जैसा कि वर्तमान समय में भी भारत के देहाती क्षेत्रों में प्रथा है। ऐसे हार अब भी बनाए जाते हैं जिनमें चांदी के रुपये या अठनियाँ प्रयुक्त की गई होती हैं। निष्क का अभिप्राय चाहे सिक्के से हो या न हो, पर यह निसंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि वैदिक युग में वस्तुओं का विनिमय सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया था। इसीलिए ऋग्वेद के एक मंत्र से यह सूचित होता है कि जो वस्तु किसी कीमत पर बेच दी जाए तो उसे फिर वापस नहीं लिया जा सकता। एक मंत्र के अनुसार किसी व्यक्ति ने कोई बहुमूल्य वस्तु कम कीमत पर बेच दी, पर जब उसे अपनी भूल का बोध हुआ तो वह खरीदार के पास गया और यह अनुरोध किया कि उस सौदे को रद्द कर दिया जाए और बिकी हुई वस्तु को बिना बिकी अर्थात अविक्रीत मान लिया जाए, पर खरीदार इससे सहमत नहीं हुआ। वेद मंत्र का यह कथन है कि कोई चाहे दीन हो और चाहे दक्ष, सबको सौदे पर दृढ़ ही रहना होगा। व्यापार स्थल और जल डैश दोनों प्रकार के मार्गों से होता था। व्यापार स्थल और जल दोनों प्रकार के मार्गों से होता था। स्थल मार्गों से माल को लाने ले जाने के लिए गाड़ियों का प्रयोग किया जाता था जिनमें बैल, घोड़े और गधे जोते जाते थे। गाड़ी को अनस कहते थे। अनस के अतिरिक्त अनेक प्रकार के रथ भी बनाए जाते थे जो सवारी के काम आते थे। रथों तथा अनसों के साथ घोड़े जाते जोते जाने का वैदिक साहित्य में अनेक स्थानों पर उल्लेख है। ऋषभ अर्थात बैल से खींचे जाने वाले वाहनों का वर्णन भी वेदों में विद्यमान है। हम ऊपर लिख चुके हैं कि वैदिक काल में गधों और ऊँटों को भी पालने की प्रथा थी। इन वस्तुओं का उपयोग माल ढोने के लिए ही किया जाता होगा। सामुद्रिक व्यापार डैश वेदों में नदियों का भी उल्लेख है और समुद्र का भी। एक मंत्र में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का वर्णन है और कतिपय अन्य मंत्रों में चार समुद्रों अर्थात चतुरह समुद्र का, जो आर्यों के देश सप्त सिंधव के चारों ओर विद्यमान थे। इन नदियों और समुद्रों में आने जाने के लिए नौकाएं प्रयुक्त की जाती थी। इसके अनेक निर्देश वैदिक साहित्य में विद्यमान है। ऋग्वेद के एक मंत्र में वरुण द्वारा समुद्र के मध्य में ले जाई गई नाव का उल्लेख है। एक अन्य मंत्र में समुद्र के संचरण का वर्णन है। नासत्यो द्वारा भुज्जियों को आद्र अर्थात जल से पूर्ण समुद्र से पार ले जाने का वर्णन ऋग्वेद के एक मंत्र में दिया गया है। समुद्र में आना जाना जिन नौकाओं द्वारा होता था उनके संबंध में भी कुछ परिचय वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। एक स्थान पर नौका के साथ सतारित्रा अर्थात सौ अरित्र या डांड वाली विशेषण का प्रयोग किया गया है। इससे सूचित होता है कि वैदिक युग में ऐसी बड़ी नौकाएं भी बनने लग गई थी जिन्हें खेने के लिए सौ चप्पू हुआ करते थे। अश्विनों या नासत्यों द्वारा ऐसी ही सतारित्रा नाव से भुज्जियों को अन्नारंभन अग्रभन समुद्र के पार ले जाया गया था। भुज्जियों की कथा ऋग्वेद में कई स्थानों पर दी गई है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक युग में समुद्र में आने जाने वाली नौकाओं की सत्ता थी। इन नौकाओं को अरित्रों अर्थात डांड या चप्पू से भी चलाया जाता था और पाल से भी। एक मंत्र में ऋषि सौम बुद्ध ने अपने सखाओं अर्थात साथियों को संबोधन करके कहा है, नाव को अरित्रों के साथ तैयार कर दो। सिंधु में चलने वाली नौका का विशेषण एक मंत्र में पक्षी दिया गया है। इससे उनमें भी पालों का लगा हुआ होना सूचित होता है। जिस नाव द्वारा भुज्जियों को समुद्र के पार किया गया था एक मंत्र में उसे पत्त्री अर्थात पक्षी भी कहा गया है जिससे उसमें भी पाल लगे होने का संकेत मिलता है। नदियों और समुद्र में आने जाने वाली नौकाएं सवारी के लिए प्रयुक्त होती ही थी, पर उन द्वारा व्यापारी माल को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता होगा। यह कल्पना असंगत नहीं होगी। अथर्ववेद के एक सूक्त में समुद्र में उत्पन्न होने वाले कृष्ण या शंख का उल्लेख है। कृष्ण से मोती या सिप्पी अभिप्रेत है। इनसे एक कवच अर्थात ताबीज बनाया जाता था, जिसे 100 वर्ष की दीर्घायु देने वाला, वर्चस्व और बल प्रदान करने वाला तथा रक्षा करने वाला समझा जाता था। ऋग्वेद में भी कृष्ण का उल्लेख है, जिससे रथों तथा घोड़ों को अलंकृत किया जाता था। ये शंख तथा कृष्ण नौकाओं द्वारा समुद्र से ही लाए जाते थे। इनका क्रय और विक्रय भी होता था। लोग इन्हें या तो अलंकरण के लिए क्रय करते थे और या इनसे कवच अर्थात ताबीज बनाने के लिए। वैदिक युग में समुद्र पार के देशों के साथ भारतीय आर्यों का संबंध था। कतिपय अन्य तथ्यों द्वारा भी यह सूचित होता है। वर्तमान समय में जहां इराक और तुर्की के राज्य हैं, प्राचीन समय में वहां अनेक ऐसी सभ्यताओं की सत्ता थी, जिनके भग्नावशेषों से ज्ञात होता है कि उनका भारत के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध भी था। इराक की यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदियों की घाटी में विद्यमान प्राचीन सभ्यताओं के 3000 साल ईस्वी पूर्व के अवशेषों में सौगौना की लकड़ी मिली है, जो पश्चिम एशिया के प्रदेशों में नहीं होती। यह माना जाता है कि उसे जल मार्ग द्वारा भारत से ही ले जाया गया होगा। प्राचीन समय में पश्चिम एशिया के विविध देशों के साथ भारत का जो संबंध था, उस पर इस ग्रंथ में अन्यत्र प्रकाश डाला गया है। यह संबंध समुद्र मार्ग द्वारा ही अधिक क्रियात्मक एवं संभव था। वेद के एक मंत्र से यह भी संकेत मिलता है कि वैदिक आर्य समुद्र के मार्ग से भली भांति परिचित थे। इसमें ऋषि आजीगर्ति सुनः सेप ने कहा है कि मैं आकाश में आने जाने वाले पक्षियों के मार्गों को ही नहीं जानता, पितु समुद्र की नावों के मार्गों को भी जानता हूँ। इन्हें सामुद्रिक मार्गों द्वारा वैदिक युग के आर्य सुदूरवर्ती प्रदेशों में भी व्यापार आदि के लिए जाया आया करते थे। पन्नी डैश वेदों में अनेक सूक्तों में पन्नियों का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 108वें सूक्त में पन्नियों और शर्मा का संवाद है। शर्मा को इंद्र ने अपनी दूती बनाकर पन्नियों के पास भेजा था। ये पन्नी रसा के पार रहते थे। इन्होंने इंद्र की गौवों को चुरा कर एक सुरक्षित तथा गुप्त स्थान पर छिपा दिया था। इंद्र ने शर्मा को अपनी दूती बनाकर पन्नियों के पास भेजा और वह रसा नदी के सुविस्तीर्ण जल को पार कर उस दुर्जयपुर में जा पहुंची, जहां पन्नियों का निवास था। शर्मा को अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस पर इंद्र ने पन्नियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें परास्त कर अपनी गौवें वापस लौटा ली। ऋग्वेद के पन्नी संबंधी सूक्त का यही सार है। पन्नियों और शर्मा के संवाद में जिन मंत्रों को पन्नियों की तरफ से बोला गया है, उनके देवता पन्नियों असुरा कहे गए हैं, जिससे पन्नियों के असुर होने का संकेत मिलता है। बृहदेवता में उन्हें स्पष्ट रूप से असुर कहा गया है और ऋग्वेद की कथा को बड़ी सरल भाषा में प्रस्तुत कर दिया गया है। ऋग्वेद के अनुसार पन्नियों की निधि अर्थात कोषागार पहाड़ से सुरक्षित थी और गौवों घोड़ों तथा वसुओं अर्थात धन संपत्ति से परिपूर्ण थी। ऋग्वेद के इस सूक्त से यह संकेत भी मिलता है कि पन्नी लोग इंद्र से सर्वथा अपरिचित थे, इसीलिए उन्होंने शर्मा से प्रश्न किया था कि यह इंद्र कैसा है, क्या यह हमारा मित्र बन सकता है। इंद्र आर्यों का प्रधान देवता था, उससे अपरिचित होना भी यही सूचित करता है कि पन्नी लोग आर्य भिन्न असुर जाति के थे। ऋग्वेद के एक मंत्र में पन्नियों को आराधसा अर्थात यागिक अनुष्ठान न करने वाले कहा गया है। उनका एक विशेषण बेकनाट भी पाया जाता है, जिसका अभिप्राय यास्क ने निरुक्त में इस प्रकार स्पष्ट किया है। बेकनाट कुसीद अर्थात सुदखोर होते हैं, धन को दुगना किया करते हैं, दुगना करने की उनकी इच्छा रहती है। पन्नी का अर्थ करते हुए यास्क ने कहा है, पन्नी वणिक होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पन्नी एक आर्यभिन्न जाति थी जो वैश्य वृत्ति से अपना निर्वाह किया करती थी। वह गौ अश्व आदि पशु पालती थी, सूद का व्यवहार किया करती थी और व्यापार के लिए दूर दूर के प्रदेशों में जाया करती थी। अनेक विद्वानों ने पन्नियों और फिनिशियन लोगों का एकत्व प्रतिपादित किया है। भूमध्य सागर के तटवर्ती प्रदेशों में जिस फिनिशियन जाति का प्राचीन काल में निवास था वह पयूनिक कहाती थी। पयूनिक लोग भी प्रधानतया व्यापारी ही थे। पन्नी और पयूनिक में साम्य से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी प्राचीन समय में इन पन्नियों का क्षेत्र अत्यंत विशाल था। उत्तर में वे रसा नदी के परे निवास करते थे और समुद्र के मार्ग से सप्त सिंधव देश तथा पश्चिम के देशों में जाकर व्यापार किया करते थे। पन्नी लोग ना आर्यों के प्रधान देवता इंद्र को जानते थे और ना आर्यों के समान यागिक कर्मकांड को मानते थे। वे आर्यों की गौवे भी चुरा कर ले जाया करते थे। इस दशा में आर्यों का उनके प्रति विरोध भाव होना सर्वथा स्वाभाविक था, पर वैदिक साहित्य में ऐसे प्रसंग भी विद्यमान हैं जिनमें कतिपय पन्नियों की प्रशंसा की गई है। ऋग्वेद के कतिपय मंत्रों का ऋषि बृहस्पत्य संयु है और देवता तक्षा ब्रिभु। यह ब्रिभु पन्नियों में मूर्धन्य एवं वरिष्ठ था। पेशे से वह तक्षा अर्थात बढ़ई था और उसकी उपमा गंगा के तट पर उगे हुए विशाल वृक्ष से दी गई है। सब कारु अर्थात शिल्पी उसका आदर करते थे और दान के लिए उसके पास धन ऐसे बहता था जैसे वायु बहती है। वह बड़ा दानी था और उसने ऋषि भरद्वाज को बहुत सी संपत्ति जो संभवतः गौवों के रूप में थी दान में दी थी। पन्नी मूर्धन्य ब्रिभु की जो यह कथा सूत्र रूप से ऋग्वेद में दी गई है उसे अधिक स्पष्ट तथा विशद रूप में बाद के साहित्य से जाना जा सकता है। उसके अनुसार एक दिन ऋषि भारद्वाज भूख और प्यास से पीड़ित हुए जंगल में फिर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जंगल से लकड़ी काट रहा है। उसका नाम ब्रिभु था। ऋषि की दुर्दशा देखकर ब्रिभु ने उन्हें दान दक्षिणा देने का विचार किया, पर यह सोचकर उसे संकोच हुआ कि वह हीन कुल का है, कहीं ऋषि उसका दान स्वीकार न करें। पर भारद्वाज से आश्वासन प्राप्त कर ब्रिभु ने उन्हें बहुत सी गौवें प्रदान कर दी। इस कथा की स्मृति मनुस्मृति में भी विद्यमान है और नीति मंजरी में भी, जहां लिखा है कि द्विज को संकट के समय असाधु से भी दान ले लेना चाहिए। जैसे कि भूख से पीड़ित भारद्वाज ने तक्षा ब्रिभु के दान को स्वीकार कर लिया था। ब्रिभु कथा से यह संकेत मिलता है कि ब्रिभु जैसे पन्नी बढ़ई का भी काम किया करते थे। संभवतः अपने इस शिल्प का उपयोग वे नौकाओं के निर्माण के लिए करते थे जिनके द्वारा वे सुदूरवर्ती प्रदेशों में व्यापार के प्रयोजन से आते जाते थे। भारत के आर्यों से उनका विरोध ही नहीं रहता था, अपितु उनके साथ निरंतर संपर्क के कारण वे उन्हें दान दक्षिणा आदि भी देने लग गए थे। चौथा, गृह ग्राम और पुर। गृह डैश वैदिक युग के आर्य अस्थायी रूप से बस्तियों में बसकर खेती तथा शिल्प व्यवसायों को अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रारंभ कर चुके थे। इसीलिए उन्होंने पुरों और ग्रामों में रहना शुरू कर दिया था, जहां वे अपनी निवास के लिए अनेक प्रकार के गृह बनाया करते थे। ऋग्वेद बनाया करते थे। अथर्व वेद में एक शाला सूक्त है जिससे वैदिक युग के गृहों और शालाओं का एक सुंदर व स्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत हो जाता है। इस सूक्त में कहा गया है कि हे साले, तू हमारे लिए ध्रुव अर्थात स्थिर होकर रह। तू घोड़ों और गौवों से भरी पूरी हो। तुझमें मधुबानी सुनाई दिया करे। दूध घी और जल की धाराएं तुझमें बहती रहा करें। तुझ द्वारा हमें महान सौभाग्य प्राप्त हो, क्योंकि वैदिक आर्य अपनी आजीविका के लिए प्रधानतया खेती और पशुपालन पर निर्भर थे। अतः उनके घरों में पशु भी बड़ी संख्या में रहा करते थे। उनकी शालाएँ घोड़ों और गौवों से परिपूर्ण रहती थी और उनमें दूध और घी की धाराएँ बहती रहती थी। इस शाला सूक्त में शाला को ब्रीह छदा और त्रिनम बसाना भी कहा गया है, जिससे उसके विशाल होने पर त्रिनों अर्थात घास फूस को संचित रखने के स्थान से युक्त होने का संकेत मिलता है। वैदिक युग के घर किस सामग्री द्वारा बनाए जाते थे, इस संबंध में भी कुछ सूचनाएं वैदिक साहित्य में विद्यमान है। मकान की छत को थामने के लिए उस समय अस्थूनों अर्थात खंभों का प्रयोग किया जाता था जो जमीन में गाड़े जाते थे। अस्थूनों के ऊपर सीधे और आड़े, प्रतिमित और परिमित सहतीर या बलियां रखे जाते थे। इन सहतीरों या बलियों के ऊपर बांस की खपच्चियां बांध दी जाती थी, जिन्हें फिर छप्पर अच्छू से पाट दिया जाता था। अथर्ववेद के 9वें कांड के 3रे अध्याय से शाला के निर्माण तथा स्वरूप पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। वहां जिस शाला का वर्णन है उसके बनाने में लकड़ी के खंभों, सहतीरों, कड़ियों, बांसों और तीन का प्रयोग किया गया है। बलियों और बांसों को यथास्थान कायम रखने के लिए सुदृढ़ ग्रंथियां अर्थात गांठें लगाने, फिर बांस की खपचियों से नहन अर्थात जाल बनाने और उस पर तीन अर्थात फूस की छद्दी अर्थात छप्पर या छाजन डालने का उल्लेख इस सूक्त में है। इससे यह सूचित होता है कि वैदिक युग की बहुसंख्यक शालाएँ प्रायः उसी ढंग की बनी होती थी जैसी कि वर्तमान समय में भी भारत के गांवों में होती है। पर अथर्ववेद के इस सूक्त से यह भी सूचित होता है कि शालाएं द्विपछा, चतुष्पछा, षष्ठपछा, अष्टपछा और दसपछा भी हुआ करती थी। द्विपछा, चतुष्पछा आदि के दो अर्थ हो सकते हैं, जिनमें दो या चार तल्ले मंजिले हों या जिनमें दो या चार सहन अर्थात आंगन हो। लकड़ी, बांस और फूस से बनी हुई शालाओं में आठ आठ दस दस मंजिल होने की अपेक्षा यही अधिक संगत प्रतीत होता है कि इस सूक्त में अष्टपछा और दसपछा से आठ सहनों व दस सहनों वाली शालाएँ ही अभिप्रेत है, क्योंकि शालाओं में घोड़ों और गौवों आदि के लिए भी व्यवस्था की जाती थी। अतः संपन्न व्यक्तियों के घरों में कई कई सहनों का होना स्वाभाविक ही था। काष्ठ, बांस और फूस से निर्मित शालाओं की अग्नि से रक्षा करना वैदिक आर्यों के लिए भी एक समस्या थी, इसीलिए इंद्र और अग्नि देवताओं से उनकी रक्षा की प्रार्थना की गई है। ऋग्वेद के भी अनेक मंत्रों में गृहों व शालाओं का उल्लेख है। एक मंत्र ऐसे सुमंगल अर्थात सुमंगल भद्रवादी अर्थात कल्याण कर वाणी वाला शकंतु अर्थात पक्षी का वर्णन है जो शकुंत अर्थात पक्षी का वर्णन है जो गृहों के दक्षिण की ओर से बोल रहा है। यहाँ घर के लिए गृह शब्द का प्रयोग किया गया है। एक अन्य मंत्र में हर्म शब्द आया है जिससे महल या विशाल इमारत अभिप्रेत है। ऋग्वेद में एक बृहंत मान अर्थात जिसका माप या परिमाण बहुत बड़ा हो का वर्णन है जिसके सहस्त्र द्वार थे। इसमें अतिशयोक्ति हो सकती है पर इससे यह अवश्य स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक युग में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें भी बनने लगी थी। इस प्रकार ऋग्वेद के सहस्त्र अस्थूनों अर्थात खम्भों वाले मकान का भी उल्लेख है। द्विपछा चतुष्पछा आदि शालाओं का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में त्रिधातु को सरण रूप से कहा गया है, जिसका अर्थ सायणाचार्य ने त्रिभूमिकम किया है। त्रिधातु या त्रिभूमिका से ऐसा मकान अभिप्रेत था जिसमें तीन सहन या तीन मंजिलें हो। विशाल घरों के निर्माण के लिए वैदिक युग में मिट्टी पत्थर आदि का भी उपयोग किया जाता था। ऋग्वेद के एक मंत्र में 100 अश्मनमयी पत्थरों से बनी पुरियों का उल्लेख है। इन पुरियों के मकान संभवतः पत्थरों से बनाए गए होंगे। ऋग्वेद के एक मंत्र में आयसी अर्थात लोहे से निर्मित पुरी का भी वर्णन है। संभवतः इस नगरी के मकानों तथा प्राचीर आदि में आयस या लोहे के प्रचुर मात्रा में उपयोग के कारण इसे आयसी कहा गया होगा। वैदिक युग के गृहों में अनेक कमरे हुआ करते थे, जिन्हें विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। अथर्ववेद के एक मंत्र में 4 प्रकार के कमरों का उल्लेख है। हविधान या भंडार गृह, जिसमें यागिक कर्मकांड के लिए आवश्यक वस्तुएं और गृहस्थ जीवन के लिए उपयोगी विविध सामग्री आदि संचित करके रखी जाती थी। अग्निशाला वह कक्ष जिसमें अग्नि का आधान किया जाता था। वैदिक युग के गृहस्थ गृहपत्य अग्नि को कभी बुझने नहीं देते थे। इसी प्रयोजन से वे अपने घर में एक ऐसा पृथक कमरा रखते थे जिसमें अग्नि सदा जलती रहती थी। पत्नी नाम सदनम या स्त्रियों का पृथक कक्ष, जिसे अंतःपुर या जनान खाना कहा जा सकता है। सद या बाहरी बैठक, इसके अतिरिक्त गौ बैल घोड़े आदि पशुओं के लिए भी गृहों में पृथक स्थान रहता था, जहां उनकी भली भांति देखभाल की जा सकती थी। वैदिक युग के गृहों को अनेक प्रकार के पर्यंकों अर्थात पलंगों तथा आसंदी आदि से सुसज्जित भी किया जाता था। अथर्ववेद में पलंग के लिए तल्प शब्द का प्रयोग किया गया है और वहां वधु को तल्प पर आरोहण के लिए कहा गया है। ऋग्वेद के एक मंत्र में 3 प्रकार की शैयाओं का उल्लेख है, प्रोष्ठ ब्रह्य और तल्प। इनका उल्लेख प्रोष्ठेस्या अर्थात प्रोष्ठ पर सोने वाली, ब्रह्येस्या अर्थात ब्रह्य पर सोने वाली और तल्य शिविरी स्त्रियों के स्वापन के प्रसंग में किया गया है। ये 3 प्रकार की शैयाएं या पलंग होते थे, जिन्हें शयन तथा उठने बैठने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। आसंदी के संबंध में इसी अध्याय के दूसरे प्रकरण में प्रकाश डाला जा चुका है। पुर और ग्राम, क्योंकि वैदिक युग में आर्य लोग अनवस्थित दशा से उन्नति कर विविध स्थानों व प्रदेशों पर अस्थायी रूप से बस गए थे, अतः बहुत से ग्रामों तथा पुरों का निर्माण हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था। वैदिक साहित्य के अनुशीलन से इस प्राचीन काल के पुरों या नगरों के विषय में भी कतिपय महत्वपूर्ण बातें जानी जा सकती हैं। पुर या नगर प्रायः दुर्गों के रूप में हुआ करते थे। ऋग्वेद में अश्मनमयी और आयसी पुरों का उल्लेख है, यह ऊपर लिखा जा चुका है। एक मंत्र में सत्यभुजी पुर या दुर्ग की सत्ता का संकेत विद्यमान है। सत्यभुजी से 100 दीवारों वाले या 100 पार्श्वों वाले किले का अभिप्राय हो सकता है। ऐसे पुर या दुर्ग बहुत बड़े बड़े होते थे, इसीलिए एक मंत्र में दुर्ग के साथ प्रीभु अर्थात सुविस्तरणी और उर्वी अर्थात विशाल विशेषणों का प्रयोग किया गया है। इंद्र द्वारा दस्युओं के 100 अश्मनमयी पुर नष्ट किए गए थे। आर्यों के विविध जन कभी अर्थात कबीले जब किसी प्रदेश पर अस्थायी रूप से बस गए तो वे जनपद स्थापित हुए, जो जन के नाम से ही जाने जाते थे। इन जनपदों का स्वरूप नगर राज्यों के समान था। जनपद की राजधानी को पूर कहते थे, जिसे दुर्ग के रूप में बनाया जाता था। जनपद के संभ्रांत वर्ग के लोग शिल्पी तथा व्यापारी पूर में निवास करते थे और किसान देहाती क्षेत्र में। उनकी बस्तियां ग्राम कहाती थी। जनपदों में ग्रामों का भी महत्वपूर्ण स्थान था, इसीलिए उनके मुखिया ग्रामणी जनपद की सभा समितियों में उपस्थित हुआ करते थे। वैदिक साहित्य में अनेक स्थानों पर ग्रामों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में अग्नि देवता को ग्रामों का अविता अर्थात रक्षक पुरोहित कहा गया है। यजुर्वेद में ग्राम में किए गए पाप से मुक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना की गई है। अथर्ववेद में ग्राम में प्रवेश पाए हुए पिशाच अस्तेन आदि के विनाश की बात लिखी गई है। इनसे वैदिक युग के ग्रामों का एक अस्पष्ट चित्र हमारे सम्मुख आ जाता है। इन ग्रामों में अस्तेन, चोर, पिशाच, रोगों को उत्पन्न करने वाले कृमि आदि का भय बना रहता था और उनके रक्षा करने के लिए अग्नि देवता तथा पुरोहितों की शरण ली जाती थी। शतपथ ब्राह्मण में ग्रामों तथा ग्रामांतों ग्राम की सीमाओं का उल्लेख है और उसमें वह भी कहा गया है कि ग्राम की सीमाओं पर विद्यमान अरण्यों में रीछ आदि पशु और तस्कर अर्थात चोर डाकू आदि का निवास होता है। वेदों में जीन आयसी अस्मनमयी पुरियों का उल्लेख है, वे प्रायः दसियों व दासों की है। पर अथर्ववेद में अयोध्या नाम की एक नगरी का वर्णन है, जिसमें 9 द्वार और 8 चक्र थे। यह पुरी देवों की थी, दस्यों की नहीं। इसमें संदेह नहीं कि वैदिक युग के आर्यों ने 9 द्वारों वाली बड़ी बड़ी नगरियों का निर्णय भी प्रारंभ कर दिया था।